ISKCON founder Acharya, DBT founder Acharya, saver of the whole world, Srila Prabhupada ki jai, Jaya Vishnupada Paramahansa Parivradhikacharya, Ashtotarashat, Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinda ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai, Shri Navdeep Mayapur Dham ki jai, Jagannath Dwarka Pridham ki jai, Shri Mathura Vrindavan Dham ki jai, Ganga Mai Yamuna Mai ki jai, Vrindadevi Tulasi Maharani ki jai, Shri Chaitanya Charitamrit ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bho, All Glories to Madhu Hare Krishna, All Glories to Madhu Hare Krishna, All Glories to Madhu Hare Krishna, All Glories, All Glories, All Glories to Shri Guru and Shri Gaurav. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Leela Adhyay 10 Shirshak hai Mahaprabhu ka Jagannath Puri Laut Aana aur Payar Sankhya jo aaj hum padhenge wo hai 143 aur jo board pe likha hai waise 140 se lekar 150 tak ये महाप्रभु का गोविंद को अपने सेवक के रूप में स्वीकार करना यह जो कथा है यह प्रसंग है ये इसमें समापन हो जाएगा आज फिर अगला प्रसंग प्रारंभ होगा ब्रह्मानंद भारती के साथ महाप्रभु का संवाद ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले Swayam Rupaha Kadamaiham Dadati Swapadantikam Ham Shri Guraha Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet Nashta Prayeshwa Bhadreshu Nityam Bhagvata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktira Bhavati Naishtiki Hare Krishna So this prasang is prakarse hai ki Sri Chaitanya Mahaprabhu Dakshin Bharat ki yatra se punah Jagannath Puri lot karke aate hain Mahaprabhu sanyas lete hain sanyas ke baad Jagannath Puri aate hain Shachi Mata ke kehne Vaise to Vrindavan ki aur prasthan karte hain lekin Nityananda Prabhu unko marg se उनका मार्ग बदल देते हैं जिसके कारण वे शांतिपुर आते हैं शांतिपुर में शची माता उनसे निवेदन करती हैं कि वृंदावन बहुत दूर है तो आप कृपा करके जगन्नाथपुरी में अपना बेस निवास स्थान बनाइए। माता के आदेश पे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करने लगते हैं। जगन्नाथपुरी में कुछ समय रहने के बाद में और सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि कई लोगों को वैष्णव बनाने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं। अब भक्तों को तो कहते हैं कि मैं किस लिए जा रहा हूं, अपने भाई विश्व रूप की खोज करने के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया था। लेकिन असली अभिप्राय क्या था महाप्रभु का, जो दक्षिण भारत के सब निवासी है उनका उद्धार करने के लिए, वहां कृपा प्रदान करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन हरिनाम का वितरण करने के लिए महाप्रभु जाते हैं। 2 साल तक महाप्रभु पूरा जो है ईस्ट कोस्ट से लेके और वेस्ट कोस्ट यहाँ महाराष्ट्र तक पंढरपुर तक पूरा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला कर्नाटका गोवा और उसके बाद महाराष्ट्र तक आते हैं महाप्रभु। और फिर रास्ते में बहुत लोगों का उद्धार करते हैं, कई जगह बहुत सारी सुंदर लीलाएं करते हैं। और ये करने के बाद महाप्रभु दोबारा फिर कहाँ आते हैं, जगन्नाथपुरी वापस लौट के आते हैं। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौट आना। तो यहाँ जगन्नाथपुरी से गए थे और वापस आए। इसके बाद महाप्रभु की एक यात्रा होगी, वो होगी बंगाल तक कन्हाई नटशाला तक। महाप्रभु दोबारा प्रयास करते हैं वृंदावन जाने का। पहली बारी प्रयास किया संन्यास के तुरंत बाद, तो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने उनको पथ भ्रमित कर दिया जिसके कारण वह शांतिपुर आए। दूसरी बारी जाने का प्रयास करते हैं तो महाप्रभु पहुंच नहीं पाते। वे कन्हाई नटशाला से जस्ट पहले रामकेली के अंदर रूप और सनातन से मिलते हैं, उन्हें दीक्षा देते हैं और सनातन गोस्वामी उन्हें कहते हैं कि इतने हजार हजार लाख, क्योंकि लाखों लोग महाप्रभु को फॉलो कर रहे थे, जो महाप्रभु के संकीर्तन को देख लेता वापस घर ही नहीं जाता था, उन्हीं के साथ ज्वाइन कर लेता था। तो चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने कहा कि इतने सारे लोगों को तीर्थ यात्रा पे लेके जाना सही नहीं है। और महाप्रभु को ये बात ठीक लगी और कन्हाई नटशाला से महाप्रभु वापस लौट आए। वापस आते हैं, भक्तों से मुलाकात करते हैं और वे गदाधर पंडित को विशेषकर कहते हैं कि मैंने आपका हृदय तोड़ा था, आपके प्रति अपराध किया, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा पाया। और अन्य भक्तों कहते हैं कि सनातन गोस्वामी, सनातन ने मुझे सही शिक्षा दिया तो अब मैं क्या करूंगा, 1 या 2 संगी को लेकर के जाऊंगा, बस ज्यादा भीड़ को नहीं लेके जाऊंगा। और फिर तीसरी बारी महाप्रभु तब प्रयास करते हैं, अब झारखंड के जंगल से रास्ते से होके वृंदावन जाते हैं और रिटर्न में आते हुए प्रयाग वाराणसी में रूप और सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे करके और फिर जगन्नाथपुरी लौटते हैं। तो ये पूरा मध्य लीला का बेसिकली जो महाप्रभु के ट्रेवलिंग पास टाइम प्रीचिंग पास टाइम्स हैं वो इस मध्य लीला का सार है। तो अभी उनका पहला ट्रेवल दक्षिण भारत से होकर के महाप्रभु वापस लौटते हैं। जब वापस लौटते हैं तो भक्त लोग बहुत खुश होते हैं और अनेक अनेक अन्य भक्त भी जो कि अन्य अन्य जगह पर रह रहे थे या कुछ अन्य कार्य कर रहे थे, वे सब वहां से जब पता लगता है कि महाप्रभु लौट आए हैं तो वे सभी समाचार को सुनकर जगह जगह से लौट के आने लगते हैं और उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी के अंदर अपना निवास बनाने लगते हैं। तो इससे पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि पुरुषोत्तम आचार्य वे आए थे और ऐसे कई कई भक्तों का वर्णन है जो जगन्नाथपुरी में आए और महाप्रभु के साथ रहने लगे। तो इन सब भक्तों के साथ में और वहां पे कौन थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो वो तो उड़ीसा के ही थे। तो जब एक बारी ऐसे ही सब भक्त बैठे थे तो वहां पे कौन आते हैं, गोविंद, एक भक्त आते हैं जिनका नाम है गोविंद। वे आते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और वे अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम गोविंद है और मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ। ईश्वर पुरी र भृत्य गोविंद मोर नाम, पुरी गोसाई राज्ञा आइनु तोमार स्थान, कि मैं ईश्वरपुरी की सेवा किया करता था। ईश्वरपुरी कौन थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो बोल रहे मैं उनका सेवक हूं और जब वो सिद्धि प्राप्ति करने वाले थे अर्थात जब उनका तिरोभाव होने वाला था तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं श्री चैतन्य की जाकर के सेवा करूं, तो उनकी आज्ञा से मैं जो हूं यहां पे आया हूं। तो और बोला कि मेरे को और काशीश्वर पंडित को, हम 2 लोगों को बोला था, हम दोनों उनके सेवक थे, लेकिन मेरे को उन्होंने बोला कि हम दोनों को बोला कि चैतन्य महाप्रभु की आप सेवा करो, लेकिन विशेषकर मुझे बोला। तो इसके बाद में हाँ मुझे बोला कि आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, उनकी सेवा करो। तो काशीवर पंडित तो क्या है, अभी सब तीर्थ यात्रा करके वो भी शीघ्र यहाँ पे आएंगे, लेकिन मैं तुरंत ही यहाँ पे आ गया, मैं कहीं घूमने वगैरह नहीं गया, कोई ब्रेक या छुट्टी नहीं लिया, सीधा ईश्वरपुरी की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पे आया। जो है चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि ईश्वरपुरी का मेरे ऊपर बहुत वात्सल्य था, एक पिता के समान प्रेम था उनका, इसलिए उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश यहाँ पे भेजा है। मेरे ऊपर अहेतु की कृपा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, आपको यहाँ पे भेजा है। तो यह सुनकर सार्वम भट्टाचार्य प्रश्न पूछते हैं उनसे। तो यहाँ पे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक का तो पहले ही चर्चा हो चुकी है, मैं ब्रीफ समराइज कर रहा हूं, दूसरा प्रश्न आज पूछा जाएगा। तो सार्वम भट्टाचार्य महाप्रभु से पूछते हैं कि ईश्वरपुरी ने, गोविंद तो ब्राह्मण खानदान से नहीं है, ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुए हैं, शूद्र परिवार में जन्मे थे, तो गोविंद ने ईश्वरपुरी ने गोविंद को अपना सेवक क्यों रखा। तो जो है तो महाप्रभु इसका उत्तर देते हैं, उन्हें चार श्लोकों के अंदर उत्तर देते हैं, 137 से लेके 38, 39 और 40 के अंदर। वे कुल मिला के ये कहते हैं कि भगवान जैसे पूर्ण स्वतंत्र हैं, ऐसे ही मेरे गुरु ईश्वरपुरी भी स्वतंत्र हैं, उनकी कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है, है ना? तो ऐसा उनको बोलते हैं। और केवल कृष्ण की कृपा किस पे निर्भर है, स्नेह के ऊपर। यदि भक्त स्नेह करते हैं कृष्ण से तो कृष्ण उन पर कृपा करते हैं। और उदाहरण किसका देते हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, विदुर जी का, कि विदुर कौन थे, एक शूद्राणी के गर्भ से जन्म लिया था, उन्होंने दासी पुत्र थे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उनके घर भोजन खाया। ऐसा भजन में गाते हैं, दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो कि भगवान जो है स्नेह प्रेम उसके भूखे हैं, भगवान नहीं देखते किस जाति पाति या क्या है। जैसे कि एक भजन में भी आता है, जाति धन विद्या बल नाकरे अपेक्षा, बड़ो दयाल नित्यानंद श्रद्धा मात्र लाया देना परम आनंद। इसके अगला तो उसमें एक लाइन आता है कि जाति धन विद्या कुल ना करे अपेक्षा, कि जब नित्यानंद प्रभु भी नाम हाट सुरभि कुंज में कृपा दे रहे हैं तो वे भी ये नहीं देखते कौन किस जाति का है, कौन किस कुल का है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना धनी है, ये सबको नजरअंदाज करके वो एक ही चीज देख रहे हैं कि इस व्यक्ति में क्या है, कितनी श्रद्धा है, कितना अधिक भगवान के चरणों में श्रद्धा है, उसके अनुसार इस मूल्य को लेकर के वो जो है नाम की कृपा उनको बांट रहे हैं नाम हाट के अंदर। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जो भक्त उनसे स्नेह करता है, भगवान ये नहीं देखते कि वो किस परिवार में जन्मा है या क्या है। उसी प्रकार जो मेरे गुरुजी हैं ईश्वरपुरी, वे भी यही देखते हैं जो है कि भक्त का कितना स्नेह आचरण है। इस प्रकार से तो महाप्रभु ने ऐसा बोल करके क्या किया, गोविंद का आलिंगन किया। तो आज हम श्लोक से पढ़ना चालू कर रहे हैं, 140 से। मर्यादा हैते कोटि सुख स्नेह आचरणे परमानंद हर यार नाम श्रवणे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह आचरण मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला है। भक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है। ऐसा बोल करके चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, गोविंद का आलिंगन करते हैं। एत बलि गोविंदे र कैला आलिंगन, गोविंद करिला प्रभुर चरण बंदन। महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और गोविंद ने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की वंदना की। तो अब चैतन्य महाप्रभु दूसरा प्रश्न पूछते हैं। प्रभु कहे भट्टाचार्य करह विचार, गुरु र किंकर हय मान्य से तोमार, तहारे अपन सेवा करा ही ते ना जुया, गुरु आज्ञा दिया छे न की करी उपाय। ये आज का प्रयार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वम भट्टाचार्य से कहा कि हे भट्टाचार्य विचार करो थोड़ा, गुरु र किंकर हय मान्य से अमार, कि जो गुरु के सेवक हैं वो क्या है, मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, तो मैं उनको अपनी सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। तो ये प्यार आज का हमारे पीछे दोहराइए, तहारे आपन सेवा करा ही ते ना जुया, गुरु आज्ञा दिया छे न की करी उपाय, तहारे आपन सेवा करा ही ते ना जुया, गुरु आज्ञा दिया छे न की करी उपाय, तहारे आपन सेवा करा ही ते ना जुया। गुरु आज्ञा दिया छे न की करी उपाय गुरु आज्ञा दिया छे न की करी उपाय हरे अपन सेवा कराए माताजी वैष्णवी गुरु आज्ञा दिया छे न की करी गुरु आज्ञा दिया छे न की करी उपाय तहारे अपन सेवा कराई ते न जुया शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य अभय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्त विधान तो स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय तहारे उससे आपन सेवा अपनी सेवा कराई ते कराना ना जो आया उचित नहीं है गुरु गुरु आज्ञा आज्ञा दिया छे न दी है कि क्या करी मैं कर सकता हूं उपाय उपाय अनुवाद अतएव यह उचित नहीं होगा कि गुरु का सेवक मेरी निजी सेवा करे फिर भी मेरे गुरु ने यह आदेश दिया है तो मैं क्या करूं तात्पर्य गुरु के सेवक या शिष्य एक दूसरे के गुरु भाई होते हैं अतः उन्हें एक दूसरे का आदर प्रभु अर्थात स्वामी के रूप में करना चाहिए किसी को गुरु भाई का अनादर नहीं करना चाहिए इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा कि गोविंद के बारे में क्या किया जाए गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के निजी सेवक थे और अब ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दी थी कि वह चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक बने अतः प्रश्न था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुभवी मित्र सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे थे तो ये बड़ा जो है प्रसंग है कि अब ये गुरु के सेवक है उनके गुरु भाई हैं और उनको जो है आज्ञा दी गई है कि आप जाओ और अपने एक वरिष्ठ गुरु भाई की आप निजी सेवक बनो चैतन्य महाप्रभु सेवक बनो तो गोविंद के लिए तो यह हर्ष का विषय था उनके अहंकार पे नहीं आई थी क्या है हम दोनों गुरु भाई फिर मेरे को सेवा में लगा दिया गुरु जी ने पार्शियलिटी की है ना कुछ ऐसा पक्षपात कर रहे हैं या काश मैं भी सन्यासी होता तो मुझे एक सर्वेंट मिल जाता तो ऐसा गोविंद तो अपने आप को सेवक ही मानते थे तो खुश थे कि अच्छा है तभी भागे भागे आए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए मौजूद थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि क्या मर्म है और उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी यहाँ एक सदाचार या एक प्रीति लक्षण सिखा रहे हैं कि किस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति किस प्रकार भक्तों से जो है कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस पूछने चाहिए तो वे सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रभुपाद तात्पर्य में लिख लें चैतन्य महाप्रभु अपने अनुभवी मित्र सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे थे वे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए ऐसे स्वयं भगवान हैं ऐसे निमाई पंडित भी थे तो शास्त्रों में भी बहुत पटु हैं लेकिन फिर भी आने वाली पीढ़ियां कोई महाप्रभु पे लांछन ना लगाएं कि देखो इन्होंने तो अपने गुरु के सेवक से सेवा ली है ना कोई उनके चरित्र में खोट ना निकाले तो यहाँ पे इस दृष्टिकोण को भी देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां ही नहीं वहां पे रहने वाले लोगों के मन में भी कोई संदेह ना आए उस दौरान भी है ना क्योंकि संदेह सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय कि एक सन्यासी के वस्त्र में थोड़ा भी छेद है, उसके चरित्र में थोड़ा भी खोट है, तो क्या है, वो एक बहुत बड़ा विज्ञापन का विषय बन जाता है। तो जैसे कि एक सफेद कपड़े के ऊपर कोई स्याही का दाग लग जाए यदि, तो वो क्लियर दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से महाप्रभु भी लोक विचार का बहुत ध्यान रखते थे कि लोग भगवान के भक्तों के प्रति और एक आचार्य के चरित्र में किसी प्रकार का खोट ना निकाल पाए। तो वे सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सार्वभौम भट्टाचार्य उत्तर देते हैं, भट्ट कहे गुरु आज्ञा हय बलवान, गुरु आज्ञा ना लंघी ये शास्त्र प्रमाण। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, गुरु का आदेश अत्यंत बलवान होता है, उसका उल्लंघन किया नहीं जा सकता, यही प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। कि नहीं, आपने तो नहीं मांगा था और आपने तो गोविंद को ऑफर नहीं दिया था कि मेरी सेवा करो, ईश्वरपुरी ने भेजा है, तो गुरु की आज्ञा क्या है, अत्यंत बलवान है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह शास्त्रीय प्रमाण है। जय श्री चादर अधिकारमन की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो और फिर ऐसा नहीं, उन्होंने दो उदाहरण कोट किए शास्त्र शास्त्रीय प्रमाण के। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम कोई तर्क प्रस्तुत करें, कोई सलाह मशविरा दें, तो हमारे पास एक शास्त्रिक रेफरेंस होना चाहिए शास्त्रों में से उसके प्रति। ऐसा नहीं कि ये मेरा मत है, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। यदि हमें भी हमसे भी कोई मार्गदर्शन लेने आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ना कुछ प्रकार से शास्त्रिक सिद्धांत को प्रस्तुत करें वहां पर। तो यही बात सार्वभौम भट्टाचार्य दो उदाहरण देके करते हैं, सशुश्रुवान मातरि भार्गवेण पितुर नियोगात प्रहतम द्विषद्वत प्रत्यगृहित अग्रद शासनम तद आज्ञा गुरुणाम यपचारणीया। तो उदाहरण देते हैं कि अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला, मानो वह कोई शत्रु रही हो। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण यह सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई की सुया में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे। गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं कि जो रेणुका सुत जमदग्नि के पुत्र परशुराम, जो कि भगवान के अवतार हैं भृगु वंश के अंदर, उनके पिता ने बोला कि अपनी माता का वध कर डालो, तुरंत अपना फरसा निकाल करके उन्होंने का सर काट दिया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जमदग्नि उनके पिता और गुरु दोनों थे। उसी प्रकार दशरथ की आज्ञा का पालन करके रामचंद्र की सेवा में लक्ष्मण तुरंत लग गए। और तात्पर्य प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, यह श्लोक रघुवंश का है और अगला श्लोक जो कोट करेंगे वह रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, जो भगवान रामचंद्र सीता के प्रति कहते हैं, निर्विचारम गुरोर आज्ञा मया कार्य महात्मनः श्रेयो हि एवं भवत्याश्च मम चैव विशेषतः। पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है, विशेषतया मेरे लिए सौभाग्य है। तो वे कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र सीता देवी को कह रहे हैं कि हो तो सीता देवी को हिचको कि आप जंगल में क्यों जा रहे हो, दशरथ महाराज ने तो ऐसे ही अपनी पत्नी के विषय में आके बोल दिया है, इतनी कठिन आज्ञा है। तो भगवान रामचंद्र सीता देवी को कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी आज्ञा क्या है, हमारे लिए सौभाग्य है, और ये बिना किसी विचार के निर्विचारम गुरोर आज्ञा, हमें उसका पालन करना चाहिए। तबे तो ऐसे ये दो उत्तर दे करके, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु ने क्या किया, तबे महाप्रभु तारे कैला अंगीकार अपना श्री अंग सेवा दिल अधिकार। सार्वभौम भट्टाचार्य के ऐसा कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा दिया। और उसके बाद से क्या होने लगा, जब गोविंद को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पर्सनल सर्वेंट निजी सेवक के रूप में स्वीकार किया, तो जगन्नाथपुरी के सारे वैष्णव उनका बहुत सम्मान करने लगे। प्रभुर प्रिय भृत्य करी सबे करे मान, सकल वैष्णवेर गोविंद करे समाधान, छोट बड़ कीर्तनिया दुई हरिदास, रामाई नंदाई रहे गोविंदेर पास, गोविंदेर संगे करे प्रभुर सेवन, गोविंदेर भाग्य सीमा न जाय वर्णन। सभी व्यक्ति गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास मानकर उसका सम्मान करते थे, और गोविंद सारे वैष्णवों की सेवा करते थे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। और इनमें कौन कौन थे, और इनके साथ में चार वैष्णव और भी थे जो महाप्रभु की भी सेवा करते थे, ये मुख्य थे लेकिन चार लोग और। तो एक तो बड़े हरिदास यानी हरिदास ठाकुर, एक छोटा हरिदास जो कि कीर्तन किया करते थे, वे रामाई नंदाई रहे गोविंदे रपाश, रामाई पंडित और नंदाई, ये चार लोग महाप्रभु के गोविंद के साथ रहा करते थे। गोविंदेर संगे करे प्रभुर सेवन, गोविंदेर भाग्य सीमा न जाए वर्णन। ये सभी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गोविंद के साथ रहते थे, अतः कोई भी गोविंद के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता। तो आज के श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से, अतएव यह उचित नहीं होगा कि गुरु का सेवक मेरी निजी सेवा करे, फिर भी मेरे गुरु ने आदेश दिया है तो मैं क्या करूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के इस महाप्रभु यह प्रश्न पूछ करके इस दुविधा का वर्ण का निवारण कर रहे हैं कि कैसे अपने गुरु की सेवा, गुरु के सेवक से सेवा ले सकते हैं, अपने गुरु भाई से सेवा ले सकते हैं, यह बहुत उचित नहीं है। लेकिन इसका क्या उत्तर दिया सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि यदि ये गुरु की आज्ञा हो तो इसे स्वीकार करना चाहिए। तो अब इस विषय में क्या कहा जाए, तो हमने तीन चार कुछ पॉइंट सोचे थे। सबसे पहले तो ये गोविंद के चरित्र से हमें क्या सीखने को मिलता है। गोविंद के चरित्र से एक बहुत ही आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए, एक सेवानिष्ठ, एक कर्तव्यनिष्ठ सेवक कैसा होना चाहिए, उनके चरित्र का वर्णन चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में के दशम अध्याय में आता है कि उनका, उनकी महानता को उजागर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला रची थी। तो क्या हुआ कि सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और जगन्नाथ के मंदिर के अंदर, उसको बोलते हैं परिमुंडा कीर्तन, ऐसे करके बात से पूछा पता रहेगा, परिमुंडा कीर्तन करके कि जगन्नाथ के हॉल के अंदर सब भक्त बहुत ही घमासान कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। तो फिर महाप्रभु ने देखा कि सब भक्त थोड़े जो है थक गए हैं, तो महाप्रभु ने बोला कि ठीक है आप अभी सब जो है जाके अपने घर में जाइए और विश्राम कीजिए। तो सब भक्त जो है बहुत थक गए थे, पसीने बह रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने देखा कि भक्त थक रहे हैं, तो जितनी भी कीर्तन पार्टी थी सबको एक एक करके उन्होंने बंद करा दिया। से कभी ऐसा होता है ना, भक्त लोग थक जाते हैं या मैनेजर्स को बंद करना पड़ता है, कीर्तन में अक्षय चल रही होती है लेकिन बोलते हैं अरे भाई रात हो गई पड़ोसी शोर मचाएंगे, तो उनको बंद कराना पड़ता है, थोड़ा धीमे करो, है ना। या भक्त लोग प्रसाद के लिए नहीं जा रहे हैं तो बोलना पड़ता है अरे भाई यू नो। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने एक एक करके सारी कीर्तन पार्टियों को शांत कर दिया, सिर्फ एक कीर्तन पार्टी रह गई। तो महाप्रभु देखा कि इतना जोरदार कीर्तन नहीं हो रहा है, तो समझ गए अभी, तो महाप्रभु का दिव्य आनंद थोड़ा कम हुआ। फिर उन सब भक्तों को बोला कि आप जो है अपने घर, सबने समुद्र स्नान किया, प्रसाद लिया सबने, और फिर महाप्रभु ने बोला कि आप सबने निवास स्थान पर जाइए और विश्राम कीजिए। और महाप्रभु स्वयं भी अपने निवास स्थान गंभीरा में आ गए। गंभीरा र द्वारे करे आपने शयन, गोविंद आसिया करे पाद संवाहन। तो महाप्रभु गंभीरा के पे आके अपने द्वार पे ही लेट गए, दरवाजे पे ही लेट गए, तो और गोविंद वहां आके महाप्रभु के पैर दबाने लगे। तो ये एक नियम था महाप्रभु का रोज कि प्रसाद के बाद, दोपहर के प्रसाद के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु 45 मिनट लगभग दो उसको क्या प्रहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीवे तो लगभग 45 मिनट, हाँ दो दंड, तो लगभग 45 मिनट के बाद 45 मिनट महाप्रभु विश्राम किया करते थे और गोविंद उनका पाद संवाहन करते थे। तो आज के दिन भी ऐसे ही हुआ, लेकिन महाप्रभु भी बहुत थके हुए थे या लीला कर रहे थे तो वे दरवाजे पे आके ही लेट गए। और जो है तब गोविंद का नियम था कि जब महाप्रभु लंच के बाद महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते थे, गोविंद फिर विश्राम करते थे, गोविंद उनके पाद सम्मान करते थे और फिर महाप्रभु का जो उच्चिष्ट महाप्रसाद है उसे ग्रहण किया करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, सब द्वार जुड़ी प्रभु कोरी आछे न शयन, भीतरे जाइते नारे गोविंद करे निवेदन। तो महाप्रभु लेट गए दरवाजे पे, पूरा दरवाजा घेर लिया, तो गोविंद ने अब कमरे में जा नहीं सके, गोविंद तो पैर दबाने के लिए तो उस तरफ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाप्रभु आप एक तरफ करवट बदल लीजिए तो मैं भीतर जाके आपका जो है पाद संवाहन कर सकूं। तो महाप्रभु ने बोला शक्ति ना ही अंग चलाई थे, मेरे में शक्ति नहीं है शरीर हिलाने की अभी। तो गोविंद बार बार उत्तर दे, नहीं आप प्लीज थोड़ा साइड दे दीजिए मैं सेवा कर सकूं। तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं मैं अपना शरीर नहीं हिला सकता। तो गोविंद ने बोला, गोविंद कहे करिते चाहे पाद संवाहन, प्रभु कहे करवाना कर यही लय तुम्हार मन। आपकी इच्छा करो ना करो लेकिन मैं नहीं हिलने वाला अभी, बड़ी दुविधा की स्थिति है क्या करें, तो आपके मन के ऊपर निर्भर है। तो गोविंद ने विचार किया और क्या किया, अपना जो बहिर्वास है जो अंग ऊपर का वस्त्र है चादर है वो महाप्रभु के शरीर पर डाला और फिर उनके शरीर को क्रॉस किया और उस तरह लांग कर कमरे में प्रवेश किया उन्होंने। देखिए एक शिष्टाचार है, क्योंकि हर शरीर के अंदर परमात्मा निवास करते हैं, इसीलिए किसी भी शरीर के ऊपर से व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, लांगना नहीं चाहिए। ये सभ्यता आजकल के लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो पुराने घरों के अंदर में जो हमारे वरिष्ठ हैं, वो किसी पे लांगना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, मनुष्य तो क्या इवन जानवर के ऊपर भी ऐसे ऊपर से नहीं टापना चाहिए। ये हृदय में बैठे परमात्मा का अनादर है बेसिकली। विशेष गांव के अंदर लोग बहुत सिखाते हैं इस प्रकार के कल्चर को, तो यही बात थी कि लांगना नहीं चाहिए। हम लोग भक्त लोग जब प्रणाम करते हैं, तुमने कई बार देखा है, क्योंकि मंदिर छोटा है, गुरु पूजा में प्रणाम करो तो भक्त कभी कभी दूसरे को टाप जाते हैं। नए भक्त होते हैं तो थोड़ा टाप जाते हैं, सिखाना पड़ता है उन्हें कि नहीं ऐसे आपको नहीं, भगवान के निर्मालय के ऊपर, इनफैक्ट कोई भक्तों के कोई वस्तु भी रखी है तो उसके ऊपर भी नहीं टापना चाहिए, और पैर से लगाना दूर की बात। इनफैक्ट हम लोग जैसे आसन पे बैठते हैं, वास्तविकता में इस आसन पे भी कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे नरसिंह कवच प्रभु एक बार जब हमें शिक्षा दे रहे थे, तो वो बता रहे कि क्या होता है, अल्टर के अंदर पुजारी को बार बार थोड़ा आसन इधर उधर करना पड़ता है, तो नरसिंह कवच प्रभु ने पैर से थोड़ा आसन इधर कर दिया, तो जनानिवास प्रभु ने उनको बोला, ए यू आर डीटी मिनिस्टर एंड डीटी वर्शिप मिनिस्टर एंड यू डोंट यू आर यू नो पुलिंग आसन बाय योर फीट। कि आसन भी जो है, कई बार हम लोग पैर से इधर उधर कर देते हैं, तो ये पैर से किसी भी वस्तु या व्यक्ति का स्पर्श करना या लांघना एक बहुत बड़ा अनादर है। उसमें परमात्मा के निवास को नहीं देखना है बेसिकली, कि हम उससे अनभिज्ञ हो रहे हैं। तो इसलिए गोविंद ने क्या किया कि जो है महाप्रभु के शरीर के ऊपर एक चादर डाली और उसके ऊपर से फिर टाप गए। पाद संवाहन कैला कटी पृष्ठ चापीला मधुर मर्दने प्रभु परिश्रम गेला। तो बड़े अच्छे से उन्होंने पैर दबाए महाप्रभु के, उनकी थोड़ी पीठ और कमर भी दबाई, तो महाप्रभु बड़े अच्छे से उनको निद्रा आई, थकान दूर हो गई। 45 मिनट बाद दो दंड बाद महाप्रभु की नींद टूटी, तो महाप्रभु ने देखा अरे गोविंद तो बाजू में बैठे हैं, तो महाप्रभु थोड़ा क्रुद्ध हुए और बोले इतनी देर से आज यहाँ क्यों बैठे हो, रोज तो कभी नहीं बैठे होते थे, आज क्यों बैठे हो। तो महाप्रभु ने पूछा उन्हें कि मेरे जब मेरे को नींद आ गई तो फिर तुमने प्रसाद ग्रहण करने क्यों नहीं गए। तो गोविंद ने उत्तर दिया कि आप तो द्वार पे रोक कर लेटे हुए थे, तो जाने के लिए कोई रास्ता तो था नहीं, तो कैसे जाता। तो महाप्रभु ने पूछा, प्रभु कहे भीतर है तब एक आईला के मने तैछे के ने प्रसाद लेता ना कैला गए मने गमने, कि जैसे अंदर आए थे वैसे बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन गोविंद ने को उत्तर नहीं दिया वहां पे। गोविंद कहे मने अमार सेवा से नियम अपराध हो का कि नरक है गमन। गोविंद ने मन ही मन उत्तर दिया कि देखिए मेरा कर्तव्य तो सेवा करना है, उसके लिए अपराध या नरक क्यों ना जाना पड़े। सेवा करने के लिए यदि मुझे अपराध या नरक जाना पड़ेगा तो तैयार हूँ। यदि सेवा करने के लिए, महाप्रभु की सेवा कर लिए, मुझे करोड़ों अपराध करने पड़े तो भी बुरा नहीं मानूंगा, किंतु अपने लिए एक अपराध की झलक से ही मैं अत्यधिक डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो गोविंद मौन रहे और महाप्रभु के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। गोविंद का अभ्यास था कि वे तब भोजन करते जब महापुरुष सोए होते, किंतु उस दिन महाप्रभु की थकावट देखकर गोविंद उनके जो है शरीर को दबाते रहे। तो जब महाप्रभु अब लेटे हुए थे तो शरीर को लांगना उन्होंने बहुत बड़ा अपराध समझा। और कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, यही सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म चैतन्य र कृपा जाने यही सब धर्म। कि भक्ति की ये सब शिष्टाचार की सूक्ष्म बातें हैं, जिसने चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त की है केवल वही इन तत्वों को समझ सकता है। कि जो वैष्णव शिष्टाचार है, सदाचार है, कि कब हमें अपराध करना, किस कब अपराध कर सकते हैं बेसिकली। So it's called breaking a higher rule for a lesser rule. कि कभी कभी हम किसी एक नियम को, छोटे नियम को तोड़ते हैं, किस लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए। breaking a lesser rule for a higher purpose basically, you know? कि कभी हमें तुलना करते, नियम तो तोड़ना ही पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए आप प्रसाद पा रहे हैं और पूरा प्रसाद समाप्त तो हो चुका है और रात्रि के 10-11 बज चुके हैं, आपकी प्लेट लगी हुई थी, उस समय आप आके प्रसाद पाने शुरू कर दिया, आपने चार चपाती थी आपके पास में या दो चपाती थी, और कोई भक्त आया उसने भी दोपहर से भोजन नहीं करा था, जैसे कल हुआ था ना 12 बजे के बाद फास्टिंग था, तो सबका शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब रात के 9-10 बजे कई भक्त घूम रहे थे प्रसाद पाने के लिए, हम भी 2-3 लोग घूम रहे थे कहीं प्रसाद है, तो फॉर्चुनेटली कल संडे था तो प्रसाद था सब भक्तों के लिए। लेकिन मान लीजिए यदि आपके पास में प्रसाद है और आप प्रसाद पा रहे हैं, तभी एक भक्त आया, बड़ा भूख लगा है उसको, अब क्या करेंगे आप, अपनी थाली में से प्रसाद देंगे या नहीं देंगे, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप नरक में जाएंगे झूठा देंगे तो, हाँ अगर आप नहीं झूठा कर लिया है, कर चुके आप, एक चपाती खा चुके हैं, तीन बची हैं, अब क्या करेंगे? और ऐसा भी नहीं कि ऊपर से खा रहे हैं, प्रॉपर झूठा किया है आपने, है ना, तो क्या करेंगे? देना चाहिए साधारणतया। कभी कोई भी आए प्रभु जी अपना उच्चिष्ट दे दीजिए, भक्त पद धूलि यार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, प्रभु जी आपका अवशेष दे दीजिए, तो क्या करना चाहिए? तब तो नहीं देना चाहिए ना, मांग के किसी को शर्मिंदा करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति हो और भक्त मतलब इतना भूखा है तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी एक छोटे नियम को तोड़ सकते हैं किसी अन्य वैष्णव की संतुष्टि के लिए। रोजाना की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, है ना, कि सब भक्त मेरा महाप्रसाद पाएंगे, कृपा प्राप्त करेंगे, लेकिन एमरजेंसी आपात धर्म के अंदर, सो वी ब्रेक अ लेसर रूल फॉर अ हायर रूल बेसिकली, कि वैष्णव की प्रसन्नता एक ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य, मुझे नाम तो याद नहीं उनका, तो वे प्रभुपाद के आसन के ऊपर एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर की फोटो लगाने वाले थी। तो उस कमरे के अंदर शायद कुछ और व्यवस्था नहीं होगी, तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी क्या मैं आपके आसन पर चढ़ के जो है फोटो टांग सकती हूँ? तो प्रभुपाद जी ने कहा, फॉर सर्विस वॉट यू कैन क्लाइंब ऑन माई शोल्डर ऑन माई हेड ऑल्सो, कि आप मेरे सर पे भी खड़े हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहने का अर्थ है कुल मिला के, ये गोविंद एक बहुत ही संवेदनशील, एक बहुत ही सदाचारी सेवक थे, जो अपने स्वामी की यशी चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा थी और वे बिल्कुल निस्वार्थ थे। तो यहीं पर अब कुछ प्रश्न आते हैं कि क्यों सन्यासियों को क्या किसी पर्सनल सर्वेंट की आवश्यकता है? क्या उन्हें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? भाई सन्यास ले लिया, अब क्या आवश्यकता है एक निजी सेवक रखने की, सेवा लेने की? वो तो उनको तो अपना सारा कार्य खुद करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खुद करना चाहिए ना, कि सेवक रखना चाहिए? क्या कहते हैं, मिक्स उत्तर है लोगों के, कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, क्यों? अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर वो अपने, क्यों उनके सन्यासी की तो आवश्यकता बहुत न्यूनतम है ना, तो उनका तो है ही क्या, वो तो भगवान जहां ले जाएंगे तो वहीं चले जाएंगे, उसमें क्या है भाई। सन्यासी को तो वैष्णव भगवान पर निर्भर होना चाहिए, अपने सेवक निर्भर थोड़ी होना चाहिए। जी माता जी, अच्छा, सन्यासी प्रोटेक्टेड रहते हैं, सन्यासी तो भगवान के द्वारा वैसे ही प्रोटेक्टेड है, सूर्यदम सर्वभूतानां, है ना, कि वे तो हमेशा, सन्यासी का मतलब क्या है कि जो भगवान को अपने मित्र के रूप में सदैव अपने हृदय के अंदर दर्शन कर सकते हैं, बेसिकली वह सन्यास का लेवल है। और इसीलिए वह प्रत्येक जीवों के क्या श्लोक है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, सन्यासी क्यों सुहृत है? वैसे सुहृत कौन है भगवान? भगवान क्या कहते हैं गीता के अंदर श्लोक है ना, ज्ञात्वा माम शांति, क्या इसके पहले, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। देखिए भगवान सुहृत हैं सर्वभूत जीवों के, और सन्यासी एक भक्त को भी, वैष्णव को भी यही बोला गया है, सुहृदम सर्वदेही नाम, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सन्यासी को ये रियलाइजेशन होता है कि भगवान सबके मित्र हैं, भगवान मेरे मित्र, और भगवान की सदैव सबके अंदर देख सकता है, वो तो हमेशा प्रोटेक्टेड है ही है। यदि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है अच्छे से और वो एक रियलाइज्ड है, तो अपने आप प्रोटेक्टेड है, उसे किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है, वह भगवान के द्वारा सेवा करता है। लेकिन फिर भी सन्यासी की इच्छा है वह सेवक रखे चाहे ना रखे, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है सेवक रखना, है कि नहीं? पहली बात। दूसरी, वे इसलिए रखते हैं ताकि वे अपने प्रचार कार्य को फैसिलिटेट कर पाएं, और उनके जो अन्य शारीरिक कुछ आवश्यकताएं हैं, चाहे वो न्यूनतम ही क्यों ना हो, वे सब पूरी हो सके शांति से। तीसरा, वे इसलिए भी करते हैं, विशेषकर ब्रह्मचारियों के लिए प्रशिक्षण होता था कि ऐसे वरिष्ठ भक्तों के साथ, सन्यासियों के साथ ट्रेवल करें और विरक्त हों बेसिकली। तो ये सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की एक महत्वपूर्ण सेवा के अंदर आता था पुराने वैदिक काल के अंदर, तो वो अपने गुरु के साथ और अन्य सन्यासियों के साथ ट्रेवल ही किया करते थे, और एक सेवक की, तुच्छ सेवक की तरह उनके सारे कार्य करते थे। क्या कार्य होते थे उनके? उनके कार्य, उनके कपड़े धोना, प्रसाद के कुकिंग करना, व्यवस्था करना, उसके बाद जिस कमरे में रहने सफाई करना, और बेडिंग वगैरह लगाना, बेडिंग वाइंड अप करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, अगर उनके पास शालिग्राम शिला है या कोई विग्रह है तो पूजा में अर्चना में असिस्ट करना। और पहले तो ऐसे टूटी अटैच बाथरूम नहीं होते थे तो पानी भर के लाना पड़ता था या कुएं से पानी निकालना। तो अर्थात सन्यासी के बाद में सोना और पहले उठना है कि नहीं। तो ये सारी व्यवस्था करना ये ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अच्छा प्रशिक्षण होता था। और गुरु भी इस प्रकार से अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया करते थे ताकि वे भी भविष्य में ऐसे विरक्त साधु बन सके, सन्यासी बन सके। तो वो अपनी कृपा हेतु भी ऐसे सेवा दिया करते थे, देते हैं। तो हम देखते हैं इस्कॉन के अंदर भी कई सन्यासी है जो बिना किसी असिस्टेंट के ट्रेवल करते हैं, है ना। और कई सन्यासी है जिनके पास एक एक दो दो तीन तीन असिस्टेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रचार क्षेत्र के ऊपर, प्रचार कार्य के ऊपर निर्भर करता है और उनकी क्षमता पर्सनल सेवकों का हैंडल करने की भी, उस पर भी निर्भर करता है। अभी पीछे जिन्होंने चंद्रमौली स्वामी महाराज आए थे तो उन्होंने हमें क्लास में बता रहे थे कि चार प्रकार के कष्ट होते हैं। आपने तीन ही ताप सुने होंगे ना, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक। बोले एक चौथा ताप क्या होता है? आदि दास्यिक कष्ट, पर्सनल सर्वेंट्स के द्वारा दिए गए कष्ट। तो महाराज अभी लगभग 70 के आसपास एज होगी उनकी, लेकिन फिर भी वो बकायदा बिना किसी सर्वेंट के ट्रेवल करते हैं। और भी ऐसे कई सन्यासी हमारे इसके, भक्ति विघ्नाथ नरसिंह महाराज हैं और प्रबोधन सरस्वती महाराज हमारे, वो सब चलो यू नो सेकंड जनरेशन हिमालय थोड़ा अभी यंग भी होंगे, लेकिन 70 साल की उम्र में भी कई कई हमारे सन्यासी हैं जो अकेले ट्रेवल करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो प्रबोधन सरस्वती महाराज से हमने पूछा था एक बार कि महाराज आपको असिस्टेंट रहते हैं। अभी पीछे तो जो किसी ने उत्तर दिया था कि सन्यासी इज प्रोटेक्टेड, तो जीबीसी का भी नियम है कि अपने साथ एक भक्त को रखना, ताकि कलयुग है तो बहुत पावरफुल है तो सन्यासी भी कहीं पद भ्रमित ना हो, इसलिए अपने साथ एक असिस्टेंट रखो। तो प्रबोधन सरस्वती महाराज से पूछा कि महाराज आप तो अब क्या करेंगे, अभी तक तो रखते नहीं थे। तो महाराज बोले जब तक अवॉइड कर सकता हूँ करूंगा। तो उन्होंने बोला क्यों महाराज ऐसा क्यों, आपकी मदद करेगा? बोले मदद क्या करेगा, कल कुछ गड़बड़ करेगा तो फंसूंगा मैं। महाराज कहते इसीलिए मैं तो रखता नहीं किसी को जो है कि इसीलिए जो है, क्योंकि एक्चुअली पर्सनल सर्वेंट रखना हमको लग सकता है कि बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं सहूलियत होगी हमको, लेकिन वास्तविकता के अंदर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और बहुत बड़ी तकलीफ भी हो सकती है। जिम्मेदारी कैसे है? क्योंकि उस भक्त के जो आपके आश्रित है, सेवक है, उसके हर आध्यात्मिक जिम्मेदारी तो आप ही की है। लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, दक्षिण भारत जब महाप्रभु गए तो उनके निजी सेवक कौन थे? उनके कालकृष्णदास। अब ये कालकृष्णदास भी बहुत बढ़िया सेवक थे, लेकिन जब साउथ इंडिया में पहुंचे तो एक जगह क्या हुआ, भट्टाहरी स्त्रियों के प्रभाव में आ गए, आकर्षित हो गए और जो है उनके साथ जाने लगे। तो महाप्रभु को जा करके उनको पकड़ के लेके आना पड़ा, शिखा पकड़ के लेकर के आए वापस, और सब भट्टाहरी ने क्या किया, महाप्रभु पे आक्रमण कर दिया हथियारों से। और लेकिन जब महाप्रभु को हथियार उन्होंने फेंके तो क्या हुआ, वे ही हथियार पलट करके वापस उन भट्टाहरों पे गए, उन सबका वध हो गया। और लेकिन महाप्रभु वापस लेकर के आए, कालकृष्णदास को नित्यानंद को सौंप दिया, बोले देखो मेरी जिम्मेदारी थी, तुम्हारा आदमी था ये, तुमको मैंने सौंप दिया, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को दोबारा मत भेजना मेरे साथ, है कि नहीं। तो बड़ा चिंता का विषय है कि मान लीजिए यदि सर्वेंट को कुछ हो जाए तो लोग तो वरिष्ठ को, सुपीरियर को गाली देंगे ना कि देखो भाई आपकी सेवा कर रहा था, और गलती चाहे सर्वेंट की क्यों ना हो, है कि नहीं। फिर महाप्रभु के साथ अगली बार जब वृंदावन जाने वाले थे तो महाप्रभु अकेले ही निकलने वाले थे, बोले इस बार किसी को नहीं लेके जाऊंगा। साउथ इंडिया में भी अकेले जाने वाले थे तो नित्यानंद बोले कि नहीं मैंने तो सब ट्रैवलिंग किया है पहले, तो सब रास्ते पता है, आराम से ले जाऊंगा आपको। तो महाप्रभु बोले कि पहले दंड तोड़ दिया तुमने, इस बार क्या क्या तोड़ दोगे पता नहीं। फिर दामोदर पंडित ने बोला कि नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ, तो बोले आप सब समय मुझे शिक्षा देते रहोगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो ऐसे करते करते महाप्रभु ने सबको रिजेक्ट किया, तो बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है इस ब्राह्मण को जाओ कालकृष्णदास को। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है। फिर अगली बार वृंदावन जाने लगे तो भक्तों ने फिर बोला आप किसी को लेके जाओ, तो महाप्रभु बोले नहीं इस बार तो किसी को नहीं लेके जाऊंगा, पहली बार दंडा तोड़ दिया तुम लोगों ने और इस बार दूसरी बार ये भट्टाहरी स्त्रियों चला गया, अकेले जाऊंगा। तो महाप्रभु को बड़ा सब भक्तों ने जीत किया कि नहीं आप कैसे करोगे, आप तो एक हाथ से जप करोगे, एक हाथ से काउंटिंग करोगे, तो कैसे आप अकेले ट्रैवलिंग करोगे, फिर कहीं भावेश नित्य करोगे, दंड कहीं जाएगा, कमंडलू कहीं जाएगा, आपका वस्त्र कहीं जाएगा, तो कौन संभालेगा उसे। तो हमारी एक विनती है कि आप क्या करो, जा तो रहे हैं हमें मत लेकर जाओ, एक अच्छा ब्राह्मण ले जाओ, है ना। तो बोले ये एक उत्तम ब्राह्मण ले लें, वो भिक्षा लाएगा, पकाएगा, प्रसाद देगा, आपका जल पात्र उठाएगा, सब करेगा। तो इसीलिए तो प्रभु कहे निजी संगी कहो ना लईबा, एक जने मिले आने और मने दुख कहिबा। बोले अपने किसी संगियों में से तो किसी एक को लेके नहीं जाऊंगा, क्यों? अगर एक को लेके गया तो क्या होगा, बाकी सब बड़े दुखी होंगे कि मेरे को नहीं लेके गए, मेरे को नहीं लेके गए। लीडर बड़ा समस्या वाला कारण है, है कि नहीं? क्योंकि सबको संतुष्ट कर ही नहीं सकते। तो महापुर ने बोला नूतन संगी है वे का स्निग्ध जार मन इच्छे जब पाई तबे लह एक जन। देखो ऐसा नया व्यक्ति होना चाहिए, नया भक्त होना चाहिए ताकि किसी को टेंशन ना हो वहां पे। दूसरा क्या होना चाहिए, स्निग्ध जार मन, उसका मन शांत होना चाहिए, ज्यादा मन रेस्टलेस चंचल नहीं होना चाहिए उसका। ऐसा मिलेगा तो लेके आओ। स्वरूप कहे यही बलभद्र भट्टाचार्य तोमा तो स्निग्ध बड़ा पंडित साधु आर्य, कि ये बलभद्र भट्टाचार्य हैं आपके प्रति इनका बड़ा अनुराग है। सच्चरित्र ने विद्वान है, आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है। तो ऐसे बोला तो महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया बलभद्र भट्टाचार्य को, और बलभद्र भट्टाचार्य का भी असिस्टेंट था उसको भी ले लिया। तो दो आदमी महाप्रभु के साथ गए। तो ऐसे हुआ, अब वृंदावन गए तो महाप्रभु जमुना को देखा, जैसे ही महाप्रभु को एक्सटेसी आ गया, जंप मार दिया उन्होंने, है ना। तो बलभद्र बड़ी मुश्किल से निकाला महाप्रभु को, रोज ऐसा होता था तो बड़े सावधानी पूर्वक ध्यान रखते थे। एक बार बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आए और बोले कि महाप्रभु ब्रज में ना सब कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण दोबारा अवतार लिया है, अर्धरात्रि में आ रहे हैं और कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, तो मैं दर्शन के लिए चले जाऊं? तो महाप्रभु को जो है कृष्ण साथ ही बैठे हैं और पता है कोई ढोंगी है, तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ये सब पाखंड है। एक थप्पड़ लगाया बलभद्र भट्टाचार्य के राधर, ऐसा है ना। और अगले दिन फिर बलभद्र चाहे कि पता लगा वो क्या था, एक रात को मछुआरा था जो अपनी नाव में जाता था उस पर लालटेन जलाता था, तो लगता ऐसा था कि वो सांप के ऊपर मणि है और जो उसकी पता और झंडा वो खड़ा रहता था खुद, तो लगता था कृष्ण है, तो सब ब्रजवास होता है कृष्ण आए कालिया पे नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा जो है महाप्रभु ने उनको भी करेक्ट किया। तो क्या है कि ऐसे आप पर्सनल सर्वेंट किसी का होगा तो बहुत सारा नौटंकी होगा अलग अलग प्रकार का, तो ये एक वरिष्ठ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके आध्यात्मिक और हर प्रकार से उनके देख रेख करने की। तो कई बार ये बहुत बड़ा समस्या का कारण हो जाता है। दूसरा क्या आप उन पर निर्भर करते हो तो बड़ी सारी गलतियां भी करते हैं। मेरे को निजी भी अनुभव है कि जब हमने इस प्रकार सेवा की, मैंने सेवा की, तो बड़ा समस्या भी क्रिएट हुआ वरिष्ठों के लिए और खुद के अहंकार के लिए भी बहुत बड़ा जो है समस्या था। तो एक बार मैं लगभग 25 दिन तक जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने ट्रैवलिंग किया था एक सीनियर डिवोटी के साथ में, लगभग आधा भारत हमने मुंबई से लेके बनारस तक बहुत सारे स्टॉपेज किए। तो अब जगन्नाथपुरी में हम थे तो वहां पे उन्होंने मेरे को दो बुक बोला कि आप लेके चलो, पता नहीं मैंने ये सुना है क्या हुआ। तो लेक्चर था और बुक बहुत बड़े बड़े थे, मतलब चैतन्य चरितमृत पूरा कंडेंस्ड ना, अभी तो आता नहीं हो, बीबीटी का एक ऑस्ट्रेलियन वॉल्यूम था, उसे 9 के 9 चैप्टर 9 मतलब सारे बुक एक के अंदर थे, वो इतना बड़ा, और एक चैतन्य भागवत और इसके अलावा कुछ और बुक। तो पहले तो जितनी दूर लेके जाओ कमर टूट जाती थी उठा उठा के, और तो उन्होंने बोला एक किताब छोड़ दो बाकी दूसरी वाले दो ले लो। तो मैंने ले लिया, अब वहां जाके वो तीसरी किताब मांग ली उन्होंने, मैं बोला लाया नहीं मैं तो, वो उनको एकदम अब लेक्चर देना था किताब तो छोड़ गई, बड़ा गुस्सा आया उन्हें, अब सबके सामने ही वो बोलने लगे कुछ, तो भी मेरे को भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई किताब भूल गया ऐसे करके। तो ऐसे बहुत जो है कई बार देखे वरिष्ठ के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है और जो सेवक भक्त है उसके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। एक बारी मुझे याद है फर्स्ट या सेकंड टाइम हिंदू में सचिन नंदन स्वामी महाराज आए थे, तो उस समय मेरा सेवा था गेस्ट रिसेप्शन वगैरह का। तो महाराज आए, हमने अच्छे स्वागत किया, उनका कीर्तन वगैरह किया, माला लपनाया पूरा टाइम, प्रसाद वगैरह की व्यवस्था की। उस समय महाराज का ना कुछ ऑपरेशन भी होके आए थे, तो महाराज कमरे के अंदर ही, उनको साथ में उनके कोई फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर वगैरह भी थे साथ में। अब नॉर्मली महाराज आते थे तो रात के 2-3 बजे 4 बजे ऐसे सुबह फ्लाइट होती थी यूरोप जाने के लिए वापसी, तो यहाँ पे पड़ाव रखते थे। अब 12-12:30 करीब बजे, 12:30-1 बजे करीब निकलना था महाराज को। अब मैं पूरा थका हुआ लेकिन सी ऑफ करने के लिए गाड़ी वाड़ी सब है प्रॉपरली, अब ना जगा जा रहा है ना सोया जा रहा है, तो बहुत ही अलार्म लगा के कुछ व्यवस्था करके मैं थोड़ा सा विश्राम करने के लिए कि जब महाराज को बाद में जाएंगे तो सी ऑफ करेंगे अच्छे तरीके से। तो फिर मैं उठ गया फाइनली 12:15 बजे उठ करके मैं आया और महाराज तैयार होकर निकलने वाले थे, और फिर मैंने महाराज को गिफ्ट दिया, धन्यवाद दिया। तो महाराज कह रहे आप अभी तक जगे हुए हो? मैंने कहा हाँ महाराज मेरी सेवा थी तो आप जाएंगे उसके बाद विश्राम करूंगा। तो महाराज ने गले लगाया और बड़ा थैंक यू, जैसे महाराज का एक्सप्रेशन रहता है नॉर्मली, तो वो थैंक यू वेरी मच, आई विल कम अगेन, ये वो सब। तो ठीक है, और फिर जब मैं कमरे में आश्रम वापस गया तो रुक्मिणी किश्पू का फोन आया मेरे पास, उस समय लगभग पौने एक एक बजा होगा, कह रहे आपने महात को सेंड ऑफ कर दिया, मैं अभी अभी आया हूँ जस्ट, तो कह रहे थैंक यू, फिर प्रभु जी भी सो गए। तो कहने का अर्थ है कि एक सेवक को बहुत टेंशन इस प्रकार का लेना पड़ता है कि जो है वरिष्ठ खुश हो, खुश भी होते हैं इसमें आशीर्वाद भी बहुत मिलता है और रगड़ाई भी खूब होती है, है कि नहीं। तो खासकर आपको कुकिंग करना है, कपड़े धोने हैं, तो ये जब तक उसका उस सेवा से अपने एल्डर के प्रति, वरिष्ठ के प्रति और सेवा भाव नहीं है, तो ये सेवक का काम करना बहुत ही मुश्किल है। खासकर कैसे कि जब वो कमरे में नहीं होते, मुख्यतः आपको सुबह का मॉर्निंग टाइम में आपको उनके लिए प्रसाद अरेंज करना है या दवाइयां अरेंज करनी है, कमरा साफ करना है। अधिकांशतः सन्यासी लोग जब नीचे मॉर्निंग में जब कर रहे हैं, उनके सेवा का क्या कार्य है, जाके उनका कपड़ा धो, ड्यूटी के सेवा के लिए अरेंज करो, तो उनका खुद का साधना बहुत हैम्पर करता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, व्हाट इज द डिफिकल्टी बुक किसने लिखा, श्रुतकीर्ति प्रभु, तो वो बता रहे कि मायापुर में प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठ के ट्रांसलेट किया करते थे, तो रात भर किया करते थे, अभी मायापुर के अंदर थे और ये बाहर खड़े रहते थे। तो एक बार ही क्या हो गया, इन्होंने देखा सब भक्त मंगल आरती में नृत्य कर रहे हैं, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ, तो वो चले गए मंगल आरती के अंदर जो है। अब प्रभुपाद जी को भी जरूरत पड़ी, घंटी बजा रहे प्रभुपाद जी तो थे नहीं, प्रभुपाद जब वापिस आए तो प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया, कह रहे आप कहाँ गए थे, तो उनको लगा प्रभुपाद खुश होंगे, मंगल आरती गया था मैं, तो बोला प्रभुपाद मैं मंगल आरती गया था। तो प्रभुपाद जी बोले डोंट इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बोले फॉर यू मंगल आरती जाना आपके लिए क्या है, इंद्रिय तृप्ति है, यहाँ पे मैं इतना सेवा कर रहा हूँ जिसके लिए उसमें मुझे जहाँ हेल्प जरूरत पड़ेगी आपको वहां पे मौजूद रहना चाहिए। तो एक सेवक का जो कार्य है एक बहुत ही थैंकलेस टास्क है ना, और इसीलिए हमारे इसको कई सन्यासी सेवक रखते हैं, कई सेवक नहीं रखते हैं, यह तो व्यक्तिगत निर्भरता है। हमने देखा इस धनुष गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में भी, जो मैंने कुछ एक दो बार दो तीन बार ट्रैवल किया था, तो एक बार हम गए थे मुरादाबाद गाजियाबाद, दो दिन के लिए ट्रैवल किया, तो महाराज रोज सुबह पहले महाराज का नियम था, महाराज उठने के बाद सेकंड काम क्या करते थे जानते हैं, अपने कमरे से बाहर आते थे और उनके जो सर्वेंट होते थे उनके कमरे को पूरी तरह नॉक करते थे और उनको उठाते थे कि उठो मंगल आरती जाना है तुम लोग आलसी हो तो ऐसा, तो अभी तो क्या नाम है अजय गौरांगप्रू और दशावतारप्रू बहुत ही बैलेंस डिवोटीज हैं, लेकिन वो भी इतना थक भी जाते थे भक्त लोग इतना ट्रैवलिंग करते हुए। तो मेरे साथ भी यही हुआ, जब मुरादाबाद गया मैं महाराज के साथ, अब कोई जानता, हम किसी को जानते नहीं थे, कोई हमें जानता नहीं था, तो प्रसाद भी नहीं मिला, घूमते रहे महाराज में से प्रसाद पाया आपने, अब क्या बोले, हाँ भी लेते हैं करके जाके रात को प्रसाद मिला। फिर जिस कमरे में रुके वहाँ इतने पता नहीं मच्छर थे, खटमल थे, जिंदगी में मैंने पहली बार इतना, दूसरी बार आज तक मेरे पास ऐसा हुआ है कि पूरी रात नींद नहीं आई। तो हमारे साथ पांच सेवनम पू थे, वो तो गाड़ी में जाके और ड्राइवर तो गाड़ी में जाके एसी चला के सो गए, और मैं पूरी रात घूमता रहा, इधर घूम के उठ के जब किया, फिर सुबह सब मॉर्निंग प्रोग्राम वाला करके फिर महाराज गाजियाबाद आए। अब मैं गाड़ी में बैठा जैसे ही, तो अब गाड़ी में बैठते नींद आ गई, प्रसाद भी तो दिन के अंदर फीस भी मिलता था पूरा, तो मुरादा ने पूरा फीस भक्तों ने बनाया था, माँ ने थोड़ा सा पाया, बाकी हमको खत्म करना था सारा। तो भूख भी लगी थी, खाया और गाड़ी में बैठ के सो गए। अब सीधा तीन घंटे बाद गाजियाबाद पहुंचे, तो वहीं जाके आँख खुली और महाराज पीछे मुड़े और देखे, कह रहे यू नो सम पीपल हैव हैबिट एज सून एज दे सिट इन द कार दे गो टू स्लीप। इतने प्रेम से डांटने का तरीका है, कह रहे कुछ लोगों की आदत होती है गाड़ी में बैठते उन्हें नींद आ जाती है। अब मेरे को शर्मिंदगी हो रही थी। फिर गाजियाबाद पहुंचे, महाराज ने कुछ मीटिंग किया, वहां भी खूब सारा प्रसाद, महाराज ने थोड़ा सा पाया, बोला इन लोगों को खिलाओ और सारे लोग हम पे टूट पड़े। तो था भी बहुत सारा फीस्ट, खाया प्रसाद, अब गाड़ी में बैठे इष्ट अग्रस्त आना था, लेकिन नींद के इतने झपके आ रहे हैं, लेकिन अब डांट नहीं खानी थी तो बैठे आराम से बड़ी मुश्किल से जग करके। फिर एक बार मैं पुणे में था, तो पुणे से बॉम्बे आए, अब महाराज का लेट नाइट तो प्रोग्राम चलता था, मैं तो सिर्फ वैसे ही बॉम्बे आ रहा था, तो मैंने बोला महाराज मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो महाराज कह रहे मैं भी जा रहा हूँ चलो मेरे साथ, मैंने कहा चलो अच्छा महाराज का संग मिलेगा। फिर जो पुणे का जो एनवीसीसी मंदिर है महाराज ने वो लैंड देखा, फिर खारघर के लैंड को देखा, फिर जुहू पहुंचे। और रस्ते के अंदर महाराज तो पूरा टाइम कम से कम नहीं तो भी 25-30 माला तो ज्यादा ही कर रहे कंटिन्यूसली, और पीछे सारे भक्त बैठे को नींद आ रही, और महाराज क्या करते गाड़ी के आगे शीशे के अंदर से पीछे देखते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे पीछे कौन क्या कर रहा है। और मैंने बार नोट कर लिया कि महाराज बाबा देखते हैं और बार बार उठाते रहते थे, आप लोग बहुत सोते हो, आप लोग बहुत सोते हो, अब क्या करें। फिर अभी लास्ट एक एनेक्डोट है, एक भक्त हमारे अभी रिसेंटली महाराज कुंभ मेला में गए थे, तो महाराज बनारस गए, तो एक भक्त दो दिन महाराज के साथ ही था और कंटिन्यूस वॉक के ऊपर प्रसाद सब करते करते हैं। तो बाद में मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कैसा रहा आपका, फोटोज तो थे कुछ, तो मैंने कहा आपका क्या अनुभव रहा थोड़ा शेयर करो। तो बताया ऐसे ऐसे महाराज के साथ बात हुई, हम यहाँ गए, महाराज ने ऐसे पॉलिटिशियन को प्रचार किया, बिजनेसमैन को प्रचार किया, सब करते थे, बहुत कुछ बताया। कह रहे कि महाराज को, लेकिन इसकी हालत खराब हो गई इस भक्त की, और महाराज ने फिर वहां से शायद दिल्ली आए, हाँ दिल्ली आना था आगे प्रोग्राम से, उसने महाराज से ऐसे पूछ लिया क्लोज थे कि महाराज आप इतना कैसे करते हैं, कर लेते हैं इस उम्र के अंदर, मेरे तो हालत खराब हो गई, उसने ऐसे बोल दिया। हाउ डू यू डू सो मच, महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। महाराज कह रहे व्हेन वी वर विद श्रीला प्रभुपाद वी आल्सो आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू प्रभुपाद, प्रभुपाद हाउ डू यू डू सो मच, कि प्रभुपाद से उन्होंने पूछा प्रभुपाद आप कैसे करते हैं इतना, तो महाराज ने यह उत्तर दिया कि हम प्रभुपाद के साथ थे तो हम भी यही सोचते थे, प्रभुपाद से पूछते थे आप इतना कैसे कर लेते हो। तो ये जो निधि सेवक होता है उसके लिए बहुत ही जो है कृपा भी बहुत है और उसके साथ अपराध भी बहुत कर सकता है। बोला जाए अग्नि और किसके साथ, अग्नि गुरु और तीसरा एक और चीज आता है, नहीं अग्नि गुरु और अर्च विग्रह, इनसे ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए और पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पास जाने में अपराध बहुत हो सकते हैं और दूर रहने से तो आपको कुछ कृपा प्राप्ति नहीं होगी। तो लेकिन जब इतना पास में कोई रहता है तो स्वाभाविक है कि इसमें अपराध बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए और गोविंद एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार से हम उनसे सीख सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार सदाचार का पालन करना चाहिए। और एक बारी ऑफकोर्स शायद ये माताओं के लिए इतना प्रसंग रेलिवेंट ना हो इसीलिए आपको कहानी बताता हूँ कि एक बार इन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज एक भक्त के घर में गए उनके डिसाइपल के, तो माता जी ने बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया और महाराज के स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी उनकी, तो महाराज ने बहुत ही थोड़ा सा लिया सिर्फ आदर रखने के लिए, और उन्होंने बनाया था इतना सारा आइटम महाराज के लिए, तो माता जी को बड़ा दुख हो गया कि महाराज आपने लिया नहीं, वो रोने लग गई वही महाराज के सामने। अब महाराज क्या करें, तो महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, यू नो यू आर क्राइंग बिकॉज यू हैव वर्क सो हार्ड, आपने इतना मेहनत किया और प्रसाद बनाया और मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, सिमिलरली आई फील वेरी क्राइंग व्हेन आई प्रिपेयर लेक्चर विद सच मतलब विद सच कितना इतने विद हार्ड वर्क एंड यू पीपल स्लीप इन द क्लास। महाराज कहते मुझे भी ऐसा ही रोना आता है जब मैं इतनी मेहनत से लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ और आप लेक्चर में बैठ के सोते रहते हो, है ना। तो महाराज ने बोला कि मुझे भी ऐसे रोना आता है, महाराज ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया लेकिन एक शिक्षा दिया। तो कहने का अर्थ है सेवक का जो जीवन है वो बहुत टफ हो सकता है, उसमें कृपा भी बहुत है, किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो हर भक्त को ऐसा लेना चाहिए वरिष्ठ भक्तों की सेवा करने के लिए। दूसरा इन जनरल भी जिन भक्तों ने अपना जीवन दिया है जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो स्वाभाविक बॉडी की के लिए आवश्यकता है, तो जो जवान आदमी हमारी उम्र में तो कोई रियलाइज ही नहीं कर सकता कि बुढ़ापा होता क्या है, कितना भी थ्योरेटिकली हम कुछ भी बोले हैं लेकिन वृद्धावस्था के कष्ट को कोई भी जवान व्यक्ति कभी रियलाइज नहीं कर सकता कभी भी, है ना। तो इसीलिए युवावस्था के अंदर जो भक्त युवा हैं जिनका शरीर ठीक से काम कर रहा है उनको देखना चाहिए कि जिन भक्तों ने अपने सेवा किया है वृद्ध हैं वरिष्ठ हैं उनकी सेवा करने के लिए लालायित रहें और सेवा अवश्य करें, अगर इच्छा नहीं भी हो तो कम से कम कर्तव्य के रूप में करें, चाहे इसके अंदर बहुत सारा टेस्ट ही क्यों ना हो इसके अंदर, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या होता है स्वाभाविक थोड़ा क्रोध आ जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ओल्ड मैन एंड अ चाइल्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, बूढ़ा व्यक्ति एक बच्चे के समान हो जाता है, तो बहुत सहनशीलता होती है लगती है उसके अंदर। तो इसीलिए चाहे अब जैसे जयप्रता का स्वामी महाराज है, अब उनको कितना सेवा कर रहे हैं, राधा गोविंद स्वामी महाराज है तो उनको तो बैठाना पड़ता है, तो इतने शिष्यों की कर्तव्य निष्ठा नहीं होगी तो कोई सेवा नहीं कर सकता, और उनको हर बार सेवा लेनी पड़ती है और सेवा लेनी भी चाहिए। और सेवा कैसे लेते हैं वो, किस भाव से, नहीं वो इस भावना से लेके उनके पास इन शक्ति होनी पड़ेगी वरिष्ठ के पास में कि उस सेवा को एब्जॉर्ब करे कृष्णा को ट्रांसफर कर सके, है कि नहीं, कृष्ण इतने कनेक्टेड होंगे तभी वो कर पाएंगे। अब और बहुत क्या बोलते हैं मीनियल सेवा, टॉयलेट लेके जाना कपड़े धोना ये सब करना पड़ता है शिष्यों को, और उसके बाद भी क्या मिलता है उन्हें, केवल डांट, है कि नहीं, उनको मिलेगी केवल डांट। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जो है जिस प्रकार ईश्वरपुरी ने भी अपने गुरु माधवेंद्रपुरी के अंत समय में इसी प्रकार सेवा की थी, तो यहाँ पे गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए आए और यहाँ पे इस प्रकार से प्रत्येक दिन पाद सम्मान करते थे वो चैतन्य महाप्रभु का, और यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद को अपने निजी सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हरे कृष्णा, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरे हरे प्रभु, हरे कृष्ण।